आरवी, तुम वहां हो? तुम भी सो गई क्या? शान की आवाज आरवी के कानों में पड़ी तो वो अपने ख्यालों से बाहर आई और कहीं शान उसको सोता समझकर फोन न काट दे, इस डर से हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मैं नहीं सोई हूं, यहीं तो हूं मैं। अगर वहीं थी तो इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? शान की ठहरी हुई सी आवाज जब आरवी के कानों में पड़ी तो धड़कने और तेज हो गईं। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया, ये एहसास पहली बार महसूस कर रही थी। किसी तरह उसने बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, आप अंशु से बात कर रहे थे और मैं आप दोनों की बातों में खलल नहीं डालना चाहती थी। वो वक्त आप दोनों का था, इसीलिए मैं चुपचाप आप दोनों की बातें सुन रही थी। अब तो अंशु सो गई है, अगर बात करना चाहो तो कर सकती हो। अब भी सिर्फ शान की आवाज़ ही उसके कानों में पड़ी, क्योंकि स्क्रीन का फोकस अब भी अंशु पर था। आरवी उसकी बात सुनकर कुछ हैरानी से बोली, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? उसका सवाल सुनकर शान भी चौंक गया, खुद से ही सवाल किया कि वो उसके बाद क्यों करना चाहता है, पर फिर खुद को समझाया और सामान्य लहजे में जवाब दिया, नहीं, मतलब अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हो, वरना फ़ोन कट कर दो। जहान ने कह तो दिया, पर ये उसका दिल ही जानता था कि इस वक्त उसके दिल में कैसी बेचैनी पसरी हुई थी कि कहीं आरवी सच में फ़ोन ही ना काट दे। आरवी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई, बात क्या करेगी ये सोचकर परेशान हो गई। वहीं अगर फ़ोन कट गया तो क्या करेगी? ना फ़ोन काटने को जी कर रहा था और ना ही बात करने की हिम्मत कर पा रही थी। अजीब से एहसासों से दोचार हो रही थी। दिल था ही बस सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़े ही जा रहा था। अजीब दौराहे पर खड़ी थी, ना बात करते बन रहा था ना फ़ोन काटने को जी कर रहा था। जब आरवी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो शान का पल कुछ उदास हो गया और उसने बुझे मन से कहा, बाय अंशु, आंटी, और अपना ध्यान रखना। आरवी उसकी बात सुनकर घबरा गई कि कहीं शान सच में फ़ोन न काटते। शान जैसे ही फ़ोन काटने को हुआ, आरवी ने हड़बड़ाहट में कहा, रुकिए। शान का हाथ बीच में रुक गया और निगाहें फ़ोन की स्क्रीन पर जम सी गई। सामने ही आरवी का घबराया हुआ चेहरा, बेचैन निगाहें जो उसे ही देख रही थी। ये तड़प आज दोनों के मन को बेचैन कर रही थी। कुछ पल वहां खामोशी पसरी रही, दोनों शान से बस एक दूसरे के अक्ष को अपनी आंखों में बसाते रहे। कुछ देर बाद शान होश में लौटा और उस पर से निगाहें हटाते हुए बोला, आंटी अब कैसी हैं? शान की आवाज़ ने आरवी को भी होश में ला दिया। जिस तरह आज वो शान को देख रही थी, उसे खुद को ही अजीब लगने लगा। उसने सकपकाते हुए उस पर से निगाहें हटाकर जवाब दिया, ठीक है, दवाई से काफ़ी आराम है और फिर अंशु की वजह से उनकी खोई ऊर्जा लौट आई है। इतने दिनों में पहली बार मैंने उन्हें इतना खुश देखा था। बोलती नहीं है, पर मेरे बिना रहना उनके लिए कितना मुश्किल है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं, तब से मैं ही माँ के लिए उनकी दुनिया हूँ। पहले भी मैं ही उनका ध्यान रखती थी, पर मेरे जाने के बाद उन्होंने खुद को लेकर बड़ी लापरवाही दिखाई है, तभी इतनी कमज़ोर हो गई हैं, पर अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा था? जहान ने एक बार फिर सवाल किया तो आरवी ने गंभीरता से कहा, कुछ टेस्ट हुए हैं ये देखने के लिए कि बार बार बुखार क्यों हो जाता है। रिपोर्ट कल आएगी, कल फिर से आएंगे डॉक्टर माँ को देखने। उसकी आवाज़ में चिंता और डर झलक रहा था, जिसे शान ने भी महसूस किया और उसको समझाते हुए बोला, रिलैक्स, तुम्हें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आंटी ठीक हो जाएंगी। आरवी की बुझी हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसकी उदासी समझते हुए शान ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुम्हारी दी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आरवी का ध्यान अब उसके तरफ खिंच गया और अगले ही पल उसने सवाल किया, आज आप वक्त पर घर आए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? मैंने सौरभ भैया को सब समझा दिया था, आपने ठीक से खाना खाया, डैड की दवाई और मालिश छूटी तो नहीं? और जाने कितने ही सवाल वो एक सांस में करती चली गई। शान खामोशी से उसके सवालों की लिस्ट को सुन रहा था। कुछ देर बाद जब आरवी चुप हुई, तब जाकर शान ने कहना शुरू किया, वक्त पर घर आ गया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, डैड को भी दवाई दे दी थी और अपनी आंखों के सामने मालिश करवाने के बाद यहाँ कमरे में आया हूँ। घर में सब ठीक है, तुम यहाँ की चिंता मत करो, कुछ दिन अपनी माँ के साथ हो तो उन्हें वक्त दो, इससे उनके साथ साथ तुम्हें भी खुशी होगी। आरवी ने हामी भर दी। दोनों ने कुछ देर बात की, फिर बाय बोलकर फ़ोन काट दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अब जाकर इन दो बेचैन दिलों को करार आया था। आरवी की अगली सुबह यहाँ हुई। उठते के साथ आज फिर अंशु का चेहरा आंखों के सामने था। उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया और उसको अच्छे से सुलाकर खुद अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद नहाकर निकली और नीचे चली आई। किचन में जाकर खाना बनाया, पर साथ में शान का ख्याल दिल में छाया रहा। आज शान को नहीं देख पाई थी, इसीलिए कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था उसे। उसने अपना मन बहलाने के लिए फ़ोन में गाने चला लिए, ब्रेकफास्ट रेडी किया, फिर ऊपर चली आई।
अंशु को उठाकर नहलाकर तैयार किया, फिर उसे लेकर नीचे पहुंची। तब तक अनुपमा जी भी नहा धोकर वहां पहुंच गई थी और पहले से बेहतर लग रही थी। आरवी ने अंशु को खाना खिलाया, उसका लंच पैक किया, फिर उसको छोड़ने स्कूल चली गई। जब लौटी तब जाकर दोनों माँ बेटी ने खाना खाया, फिर आरवी ने उन्हें दवाई देकर आराम करने को कहा और खुद काम में लग गई। अनुपमा जी ने बहुत कहा कि वो मदद करवा देती हैं, पर आरवी का सख्त आदेश था कि सोफे पर से उठना भी नहीं है। अगर किसी काम को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो वो उन्हें कमरे में छोड़ आएगी और सारा दिन बाहर नहीं आने देगी। उनकी बेटी आज उनकी माँ बनकर उन पर अपना हुक्म चला रही थी, पर ये देखकर अनुपमा जी खुश थी। आरवी के जाने के बाद उसका यूं ही हक जताकर उनकी फिक्र करना तो उन्होंने सबसे ज्यादा मिस किया था। आरवी ने सारे घर का काम निपटाया, तब तक में डॉक्टर अंकल भी आ गए। उन्होंने अनुपमा जी को चेक किया, फिर आरवी को देखकर बोले, चिंता वाली कोई बात नहीं, वायरल फीवर है, यही दवाई चलेगी और जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। बस इनके खाने पीने का ध्यान रखिएगा, बुखार की वजह से वीकनेस आ गई है, बाकी टेस्ट में कुछ नहीं आया है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवाई चलेगी, साथ में प्रॉपर आराम दीजिए इन्हें और खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। आरवी ने हामी भरी, फिर उन्हें बाहर तक छोड़कर आई। उसके सर से बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई थी, अब वो फ्री थी तो अनुपमा जी के पास बैठ गई। दूसरी तरफ शान सुबह सुबह उठा तो आज वो रूम में अकेला था। उसका मन कुछ उदास हो गया, पर उसने अपना सर झटका और जिम में चला गया। एक्सरसाइज करते हुए निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ घूम रही थीं। आरवी रोज इस वक्त यहाँ होती थी और छुपकर उसको देखती थी, पर आज वो यहाँ नहीं थी। शान की बेचैन निगाहों को शायद उसी का इंतजार था। आज उसका यहाँ भी मन नहीं लगा। नहाने का टाइम हुआ तो जैसे ही जिम से बाहर निकला, छाया उसका जूस लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। शान ने ग्लास उठाया और अपने रूम में आ गया, खुद ही अपने कपड़े निकाले और नहाकर रेडी होने लगा। फोन उठाने लगा तभी मैसेज का नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज देखा तो निया का मैसेज था। शान ने मैसेज पढ़ना शुरू किया। बेबी, मैं जानती हूँ मैं तब तुम्हारा दिल तोड़कर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर मुझे अब अपनी गलती का एहसास है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे एक मौका तो दो अपने प्यार को साबित करने का। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आज भी तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो।
अतीत में जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। ऐसे मुझे नजरअंदाज मत करो, मैं इतने वक्त से तुमसे मिलने, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। और प्लीज शान, मुझे एक मौका दो अपने प्यार को साबित करने का। एक बार मुझसे मिल लो, बात करनी है मुझे तुमसे। तुम भी जानते हो कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करते हैं ना हम। मैं वादा करती हूँ इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई लव यू शान, आई रियली डू। जस्ट गिव मी अ लास्ट चांस टू प्रूव माई लव। टू बी कंटिन्यूड।